ओम शांति। दादी जी के स्मृति दिवस पर ईश्वरी परिवार के भाई बहने सारे भारत के कोने कोने से, नेपाल से और कुछ एक दूसरे स्थानों से, देशों से भी सम्मिलित हुए हैं और ये एक बहुत ही सीधी सी बात है कि दादी जी का सबके साथ कितना घनिष्ठ स्नेह का संबंध था और दादी जी के प्रति हम सब भाई बहनों का, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर जो लगभग 12,000 के करीब युगल और माताएं आई हुई हैं, मोस्टली सभी दादी जी के समय से हैं। जरा हाथ खड़ा करें जो दादी जी के साथ रहे हुए हैं, 99% सब हैं उसमें। तो दादी जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था, सभी जानते हैं कि दादी जी से पहली बार ही कोई मिलते थे तो पहली बार में ही दादी जी हर एक का दिल जीत लेती थी। मुझे याद आता है पहले पहले दादी जी साकार बाबा से बॉम्बे में मिलने के लिए आई थी, उस समय वो पटना में सेवा में थी और उनके साथ में पटना सेवा के निमित्त जलान बाबू करके वहां थे, जो स्टील किंग के नाम से जाने जाते थे। और उनका जो स्थान था बिल्कुल वो मार्बल हाउस की तरह बना हुआ था और दादी जी सेवा के लिए वहां रहती थी। दीपावली का टाइम था, बाबा ने दिल्ली से दीदी मनमोहिनी को भी बुलाया, दोनों दीदी और दादी और जलान बाबू तीनों थे। अक्टूबर 1959 की बात कर रहा हूं मैं, बॉम्बे में बाबा उस समय कुछ 2-3 महीने के लिए आए हुए थे। उस समय एक प्रकार से मेरी शुरुआत थी ज्ञान की बातें अच्छी तरह समझने की, ईश्वरीय सेवा के कई गुण, कई बातें जानने की। लेकिन उस दिन से, जिस दिन दादी जी और दीदी जी वहां थे और जलान बाबू का बर्थडे था, ये दीपावली के दिन की बात है, तो बाबा ने उन आत्माओं को, तीनों को विशेष अनुभव कराने के लिए, बाबा को कहते ही हैं दिव्य दृष्टिदाता, दिव्य चक्षु विदाता, तो तीनों को जैसे बाबा ने वतन में भेज दिया। और वतन में जाने के बाद क्या होता है, फिर तो वतन की रास, तो बाबा एक एक को रास करवा रहे थे। उस समय मैं बाहर से आया था, कहीं से कोई सेवा का बाबा ने जो काम दिया था उसको देख के, तो मैंने आके देखा ये क्या हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा था, तो एक खिड़की के पास खड़ा हो गया। तो बाबा पहले दादी जी को रास करा रहे थे, फिर दादी का हाथ छोड़ा, फिर दीदी मनमोहिनी का हाथ पकड़ा, तो दादी धीरे धीरे उसी ट्रांस के नशे में और ऐसे ऐसे हाथ करते आ करके मेरे हाथ पकड़ लिए, मैं डर गया। लेकिन दादी थोड़ी टाइम में हाथ मेरे ऐसे ऐसे करके ऐसी भाषणा दी कि दादी हमारी बड़ी बहन है, 12-13 साल की है और मैं 8 साल का जैसे बच्चा हूं, ऐसी भाषणा। तब से लेकर के दादी जी के साथ वही संबंध चलता रहा। 1964 तक दादी वहां पटना में थी, साल में 2 बार इस तरफ आना होता था, 1 बार मधुबन में, 1 बार बॉम्बे में। तो जब भी आती थी तो उनसे मिलना होता था और उनका निस्वार्थ भाव, जिगरी प्यार इतना मिलता था कि दिल होती थी उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताएं हम। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था। 1964 में जब प्रदर्शनी बॉम्बे में बनी तो कुछ एक चित्र मेडिटेशन से संबंधित बनाने के थे। रमेश भाई ने बाबा को लिखा कि ये चित्रों के लिए जगदीश भाई और दादी जी को यहां भेज दें तो बहुत अच्छा हो। तो बाबा ने दादी जी को और जगदीश भाई को दिल्ली से और पटना से बॉम्बे में भेजा और तब से लेके दादी जी का वहां पर रहना हुआ, अक्टूबर 1964 से लेकर के। उस समय कोलाबा का सेंटर था, फिर बाद में गामदेवी का सेंटर भी बन गया, रमेश भाई जी का परिवार निमित्त बना था उसके लिए। तो दादी जी फिर गामदेवी सेंटर पे रहती थी, थोड़ा टाइम पुष्प शांता दादी भी उनके साथ रही थी, फिर वो कोलाबा में चली गई थी। तो मेरा उस समय दादी जी के साथ साथ एक स्टूडेंट लाइफ का भी, सवेरे क्लास दादी जी जहां मुरली पढ़ती थी वो सुनता था और उसके बाद वहीं नाश्ता करके और जो सेवा बाबा लिख के भेजते थे या फोन से बताते थे उस सेवा के अर्थ, फिर जिसमें के यज्ञ की ही सेवा और तो कोई सेवा नहीं, चाहे वो प्रिंटिंग जॉब थे, चाहे खरीदारी थी, चाहे आर्टिस्ट का काम था, और या तो फिर बाबा वीआईपीस की सर्विस के लिए भिन्न भिन्न प्लान्स देते थे। उसमें देखा गया कि दादी जी का रोल जो था वो बड़ा अद्भुत रोल था। वीआईपीस को समझाने के लिए दादी जी जिस तरह से एक निडर होकर के समझाने का पार्ट वो प्रैक्टिकल में देखता था, अच्छे से अच्छे वीआईपीस, हर फील्ड के वीआईपीस, न सिर्फ पॉलिटिकल लोग लेकिन बिजनेस के अंदर भी। तो उस बातों को मैं नोट करता था और दादी जी के साथ कोई ना कोई नए नए प्लान बनाने के लिए दादी जी हमेशा राय करती थी, भाई इस साल कुछ नया प्लान होना चाहिए, इस साल कुछ नया प्लान होना चाहिए, हम लोगों की बुद्धि चलाती थी। बड़ा मजा आता था सेवा का। फिर 1964 से 69 तक दादी जी के साथ कई अच्छे अच्छे भाई बहने ग्रुप्स के रूप में बाबा के पास जाते थे, मधुबन से लौट के आते थे, बड़ी रिफ्रेशमेंट सुनाते थे। 69 जनवरी में जब बाबा के पास दादी गईं, एक ग्रुप सिंधी भाई बहनों का था, शायद आप जानते हैं, गोविंद भाई लंदन वाले और उनके पिताजी, माताजी, उनके दूसरे भाई, उनकी युगलें, सब लोगों को लेकर के गई थी। और दादी जी ने उन सब को बाबा से मिलवाया, रिफ्रेश किया और वो दिल्ली की तरफ गए और बाबा ने दादी जी को अपने पास रोक लिया कि बच्ची आप यहीं रहो, क्योंकि दीदी उस समय टूर पर थी, बनारस के तरफ गई हुई थी। उन दिनों में बाबा के पार्थिव शरीर की थोड़ी तबीयत कभी कभी ऊपर नीचे होती थी, लेकिन जब डॉक्टर आता था तो बिल्कुल ठीक होती थी। लेकिन 18 जनवरी के दिन बाबा सुबह की मुरली नहीं सुना सके थे, सब जानते हैं, और शाम के टाइम बाबा ने मुरली सुनाई और लास्ट में कहा, अच्छा बच्चों से विदाई। उसके बाद बाबा अपने रूम में जाके चारपाई पर बैठे, दादी जी साथ में थी, और उस समय जैसे अव्यक्त मुरलियों से आप सब जानते हैं, बाबा ने यज्ञ की बागडोर कहो या अधिकार कहो या शक्तियां कहो, वो दादी जी को पास ऑन करके हाथ में हाथ दे करके और अव्यक्त हो गए थे चारपाई पर बैठे बैठे। उसके बाद सबको मालूम पड़ा, मैं बॉम्बे में था उस समय, दूसरे दिन फिर आ गए थे यहां, बाबा के अव्यक्त होने के बाद आप सोच सकते हो क्या वायुमंडल बना होगा उस समय, सभी भाई बहनों के दिल में क्या चलता होगा, क्या प्रश्न उठते होंगे। लेकिन दादी जी बड़ी गंभीर, शांत और अपने शक्ति स्वरूप में हर कार्य को आराम से जैसे देख रही थी, आने वाले भाई बहनों का बड़ा ध्यान रख रही थी। बाबा का अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद 21 जनवरी 1969, उस दिन गुलजार दादी जी के द्वारा अव्यक्त बाप दादा का आना हुआ और सबसे पहली अव्यक्त मुरली उस समय सुनने को मिली। उसमें बहुत बातें बाबा ने स्पष्ट की थी, उनमें सबसे मुख्य बात थी, बाबा तो अव्यक्त रूप से गाइड करते रहेंगे, हर कदम पे गाइड करेंगे, लेकिन साकार में दादी और दीदी वो निमित्त हैं, वो ईश्वरी परिवार की पूरी संभाल करेंगी और हर तरह से गाइड करती रहेंगी। उस समय दादी जी के साथ, दादी जी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजर थी, अपने साथ में उन्होंने, जैसे बाबा ने शुरू में 8 बहनों को निमित्त बनाया था यज्ञ का, और अपने यज्ञ का ट्रस्ट की उनको ट्रस्टी बनाया था, जिसमें 3 माताएं और 5 कुमारियां थीं, दादी जी उनमें से एक थी, मम्मा थी। तो इसी तरह से दादी जी ने जो 8 मुख्य दादियां, उन सब को उस समय बुलाया हुआ था, दीदी दादी और फिर बॉम्बे से पुष्प शांता दादी और ब्रिजेंद्रा दादी थी, अमृतसर से क्या नाम चंद्रमणि दादी, गंगे दादी, इस तरह से दूसरी दादियां भी थी, मनोहर दादी, रत्नमयी दादी भी उस समय बॉम्बे में थी। आठों के आठों दादियां यहां इकट्ठी हुई और उन्होंने ये फैसला किया कि मधुबन में एक ऑफिस होनी चाहिए। तब तक ऑफिस बाबा खुद ही संभालते थे या तो उनको चंद्रास दादा मदद करते थे। उस ऑफिस के निमित्त, क्योंकि दादी जी के साथ मैं साथ साथ बॉम्बे में सेवा में रहा था और भाइयों की और ड्यूटीज अपने अपने स्थान पर थी, तो मुझे दादियों की तरफ से निमंत्रण मिला। मैं विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मैं जब भी बाबा से कहा कि मैं आपके पास आकर के सेवा करूं, तो बाबा पहले कहते थे विचार करेंगे, फिर कहेंगे यहां क्या करोगे, यहां भील लोग रहते हैं, तुम्हारी भाषा भी नहीं समझेंगे। तो मैं चुप कर जाता था। जब दादियों की तरफ से ये सब मेरे पास संदेश आया, दीदी मनमोहिनी पहले वो खास बॉम्बे आई बताने के लिए, मैंने कहा दीदी क्या करूंगा आकर के मैं। फिर दादी जी खुद आई, फिर उन्होंने निमंत्रण दिया। इस तरह से फिर मैंने कहा मैं बाबा से पूछूंगा। फिर बाबा से पूछा, बाबा ने भी बड़ा युक्ति से मेरे को गले में फांसी डाली। बाबा ने कहा देखो ये बड़ी दादियां हैं, वो अगर आपको आमंत्रित कर रही हैं तो एक महीने के लिए ट्रायल करके देखो। वो एक महीना अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 10 साल में जो बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं सिखाई थी और वो यज्ञ में सेवा में लगनी थी, तब तक तो बाबा जो कहते थे हम करते रहते थे। अपनी बुद्धि नए नए विचार वो बाबा कहे तो उसको चलाते थे, नहीं तो नहीं। लेकिन जब से फिर मधुबन में रहना शुरू किया तो दीदी और दादी उनके साथ में सेवा का बहुत मौका मिला। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं थी, लेकिन मैं सोचता रहता था कि मेरा यहां पर पार्ट क्या है। और देखने में आया कि जो विशेषताएं बाबा ने भरी थी उन सब को यहां पर सेवा में लगाने का मौका मिला। सभी जानते हैं, एक तो सब भाई बहने जब आते थे उनके रहने का ठीक से स्थान नहीं था। बाय चांस वो पार्ट शुरू हुआ, फिर इतने भाई बहन आए तो उनके रहने बैठ करके क्लास करने के लिए बड़ा स्थान चाहिए, उनके भोजन के लिए बड़ा किचन चाहिए, डाइनिंग चाहिए, ये सब बातें आने लगी फिर धीरे धीरे। और उसमें हमारे कुछ इंजीनियर भाई, हमारे छाया भाई, देवचंद भाई, हमारे मैसाना वाले काका शांति भाई, ये सब बाबा के बच्चे, और फिर बाद में हमारे जाल मिस्त्री भाई, वो सब मिलते गए धीरे धीरे। इधर बहुत अच्छा स्थान बनते गए। इसके साथ में फिर भिन्न भिन्न स्थानों पर भारत में कई प्रकार की सेवाओं के लिए जाना हुआ। इसी तरह से फिर यूएन का निमंत्रण आया था दादी जी के नाम पर, वो नहीं जा सकती थी, उनकी तरफ से मुझे जाने का मौका मिला था। और तब से लेकर के विदेश में भी काफी सेवाएं करने का मौका मिला, लेकिन कहां पर भी मैं रहा, किसी जगह भी दादी जी के साथ फोन से जरूर कांटेक्ट होता था। और उसमें एक बड़ी दिल को छूने वाली बात, मैं और प्रताप भाई दोनों ही थे हम रशिया में, एक दिन दादी का फोन आया सवेरे सवेरे। दादी कहती है, निर्वैर भाई आज तो बड़ा आश्चर्य हो गया। मैंने कहा, दादी क्या हुआ? कि दादी के बाथरूम में एक सांप आ गया था उनके कमोड में। कैसे आ गया वो, कुछ हमारी इंजीनियरिंग कमी रही, और दादी ने डरी नहीं, कहती मैंने बाल्टी भर भर करके उसको पानी डाल डाल करके भगा दिया। दादी ने तो सुनाया, लेकिन हमें बड़ा ख्याल हुआ। फिर वापस आए, उसके बाद फिर दादी जी की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे होने लगी थी, सब जानते हैं। तो 14 मास दादी जी के साथ डे एंड नाइट, चाहे मधुबन में थे, चाहे बॉम्बे में थे, चाहे अहमदाबाद में थे, कम से कम दादी जी 3 बार बुलाएंगी सारे दिन में, फोन करेंगी, निर्वैर भाई क्या कर रहे हो? दादी कुछ कारोबार है, 2 मिनट आ सकते हो? जी दादी। जाएंगे, दादी से रूरवान करेंगे, कुछ न्यूज़पेपर की बात करेंगे। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात, रोज शाम को दादी जी के साथ दादी जी से मुरली सुनने का, फिर थोड़ा सुना करके फिर दे देती थी, अच्छा अभी आप सुनाओ। इसी बहाने मैं सिंधी मुरली पढ़ना फिर से सीख गया। तो मुरली की क्लास होती थी, कुछ भाई बहने आते थे, उसमें खास माताएं आती थीं, वो बाहर से दादी के कॉटेज से देखती थी। दादी को थोड़ा उस समय सेफ रखने के लिए कि कोई ऐसी बात ना हो जो बीमारी कुछ बढ़े। लेकिन दादी क्या कहती थी, अरे इन बूढ़ियों को अंदर बुलाओ ना, उनको अंदर बुलाओ, फिर वो अंदर आएंगी, उनको दादी सब को टोली या फल कुछ देंगी, तो कोई बच्चे होंगे तो बच्चों को बुला लेंगी। कहने का भाव है कि दादी जी का निस्वार्थ भाव का प्यार, दिल का प्यार, छोटे से छोटे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बड़े बड़े वीआईपीज हर वर्ग के उनके साथ, संत महात्मा या तो जजेस या तो जो जितने भी और वीआईपी डॉक्टर्स, उनको दादी इस तरह से उनके प्रति भावना रखती थी, उनकी दिल जीत लेती थी जहां भी वो रुकते थे, उनके निवास स्थान पर जाने का, उनको देखना कि वो आराम से रहे हुए हैं। इस बातों से दादी के जो मैनर्स थे, वो मैनर्स बहुत रॉयल भी थे, लेकिन साथ साथ हर एक की दिल जीतने वाले थे। इसलिए आज देश विदेश के अंदर दादी जी को सभी बहुत दिल से याद करते हैं, और दादी जी ने अपने साथ बड़ी दादियों को हमेशा साथ लेकर के टीम वर्क का काम किया। जानकी दादी, गुलजार दादी, बाकी दादियां भी, रतन मोहिनी दादी, सभी को साथ रखा। और उन सब को साथ रखने का फल ये है कि दादी जी की तबीयत के कारण, हालांकि दादी जाना तो नहीं चाहती थी, मैं ये भी बता देता हूं, पर ड्रामा में उनका पार्ट दूसरा था। जाना हुआ, लेकिन वो दूसरी दादियों को इतना अपने साथ नजदीक लाई, जो उनके जाने के बाद भी बड़ी दादियों ने देखो इतना अच्छा ईश्वरी परिवार को संभाल के रखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये भी एक प्रकार से मैं कहूंगा दादी जी की देन है। और आज दादी जी का स्मृति दिवस है, हम सब विशेष उस आत्मा को जो इस समय अपना भविष्य का पार्ट बजा रही हैं, बहुत श्रेष्ठ पार्ट बजा रही होंगी, लेकिन साथ साथ मैंने देखा है कि ईश्वरी परिवार के सभी भाई बहनों को जरूर अमृत वेले या स्वप्न में दादी आकर के गाइड करती रहती है, आज दिन तक करती रहती है। और आज अभी गुलजार दादी जी आकर के भोग स्वीकार कराएंगी, फिर जो सीन होगी वो तो आप हम सब देखेंगे, लेकिन आज के दिन विशेष हर ब्राह्मण के दिल में दादी के प्रति विशेष भावना बनती है। जो साथी और उनके साथ में जो भाई बहने दूसरे भी डॉक्टर सुन के या तो अन्य संत महात्माएं, VIPs, सभी के दिल में दादी के प्रति बहुत बहुत प्यार रहता है, तो मैं यूं कहूंगा दादी जी के प्रति हम सबकी बहुत बहुत श्रद्धा भावना और उनके प्रति श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं, और दादी जी की तरफ से सबको बहुत बहुत प्यार भरी याद भेज रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, ओके। और कुछ सुनना है? बातें तो बहुत हैं, लेकिन संक्षिप्त में इतना ही ठीक है। ओम शांति।
हमारे बीच परम आदरणीय गुलजार दादी जी आए और बाबा को भोग स्वीकार कराएं, उसके पहले एक निवेदन है आप सबसे, सभी भाई बहनों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूं आप सबने पुष्पांजलि में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दिया। हम सब अव्यक्त दादी जी से मिलन मनाने के लिए और उन्हें भोग स्वीकार करने के लिए यहां बैठे हैं। 14,000 भाई बहन आपके पीछे बैठे हैं। हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप सब वरिष्ठ भाई बहनों से और टीचर्स बहनों से भी, कि कृपया मंच पर न चढ़ें, जहां हैं हम वहां से ही अव्यक्त मिलन मनाएं। पीछे बैठे हुए लोगों को भी उस अव्यक्त मिलन का आनंद लेने दें। ये एक व्यवस्था यहां आप देख रहे हैं की गई है, तो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने दें, क्योंकि जब यहां बहुत अधिक भीड़ हो जाती है, आप सबका दिल करता होगा कि हम चलें और दादी जी से मुलाकात करें, लेकिन इस बार ये व्यवस्था बहुत सीमित रखी गई है। जो यज्ञ में अनन्य रत्न हैं और वरिष्ठ भाई बहन हैं, उनको ही केवल मंच पर रखा गया है। तो कृपया हम अव्यक्त मिलन की भाषा अव्यक्त दादी से अव्यक्त मिलन मनाएं अव्यक्त होकर, तो बहुत अच्छा रहेगा। हम इसमें आपका सहयोग चाहते हैं, बहुत शुक्रगुजार होंगे कि अव्यक्त होकर के ही हम ये मिलन मनाएं। धन्यवाद। बहुत ध्यान रखेंगे, नहीं तो अगर आप मंच तक आएंगे और सिक्योरिटी वाले भाई बहन रोकते हैं तो आपको भी कष्ट होगा और हमें भी।